नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो लाइव सूत्रास के मंच पर। आज से हम ज्योतिष इन हिंदी पॉडकास्ट पर एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो हर वेडनेसडे को ब्रॉडकास्ट की जाएगी। इसमें हमारे स्टूडेंट्स कोर्स में सीखी हुई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारे लिसनर्स को नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिस्कशन नक्षत्र, दशा, लग्न कुंडली और वर्ग कुंडलियां जैसे टॉपिक्स पर होगी। हमारी इंटरव्यूअर ज्योति हैं, जो कि मुंबई में रहती हैं और फाइनेंस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। इनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है और वह एक अच्छी स्टूडेंट है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astrolifesutras.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाले कोर्सेज की भी जानकारी दी गई है। हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलाइफ सूत्रास के नाम से भी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी ज्योतिष से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।
लगन का मालिक कुंडली से भाग्य तत्व देखते हैं। ज्योतिष
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति। ज्योतिष इन हिंदी पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। एस्ट्रो लाइफ सूत्रास की नई सीरीज एस्ट्रो डिस्कशन विद फ्रेंड्स में आज मेरे साथ है तरुण जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम दोनों की एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी और ग्रोथ एक साथ चल रही है। तरुण जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए, अपने एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड को लेकर, और आप ALS एस्ट्रो लाइफ सूत्रास और नितिन सर से आप कैसे जुड़े और आपने क्या सीखा?
मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और एक एज ए प्रोफेशनली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सर्विस जॉब कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 23 इयर्स। और एस्ट्रोलॉजी से करीब करीब पिछले 6 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और कई प्लेटफॉर्म से मेरे को उसको सीखने का मौका मिला। 3-4 जगह से मैंने सीखा, थ्योरेटिकल पार्ट सीखा, और पिछले 2 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी सूत्र से कनेक्ट हुआ। उसके बाद उनका मैंने एडवांस कोर्स किया उनके साथ, नितिन सर के साथ। तो जहाँ तक मेरी अपनी थिंकिंग है कि जो इनका पढ़ाने का तरीका है ना, बेसिकली वो ये थ्योरेटिकल पार्ट तो मैंने हर जगह सीख लिया, 3-4 प्लेटफॉर्म सीखा, बट उनको अप्लाई कैसे करना है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, वो नितिन सर ने ही सिखाया।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपका जैसा एक्सपीरियंस है मेरा भी सेम ही है। मैंने भी बहुत जगह से सीखा, मुझे जो टेक्निकल नो हाउ है या थ्योरेटिकल पार्ट बोलिए वो मुझे अच्छे से आता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि क्लाइंट को क्या बोलना है। वो तो ये सुनने नहीं ना आया कि आपका 10th लॉ डेब्लिटेटेड है या ऐसा है, उसे तो रिजल्ट चाहिए, जो मैंने नितिन सर से सीखा। तो आज का हमारा डिस्कशन है D24 पर, डिविजनल चार्ट D24। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क चार्ट है जो हमें हमारी इंटेलिजेंस को दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है लोग इसको एजुकेशन से जोड़ के देखते हैं। एजुकेशन और इंटेलिजेंस दो अलग बातें हैं। तरुण जी, आपका क्या ओपिनियन है इस बात पर?
डेफिनेटली आपने बिल्कुल जैसे बोला ज्योति जी कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इंटेलिजेंस का एक हो सकता है एक आदमी इंटेलिजेंट हो बट एजुकेशन वाइज डिग्री ना हो उसके पास, एजुकेटेड ना हो, बट फिर भी बहुत अच्छा कर रहा हो कैरियर में। तो डेफिनेटली दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो और इन दोनों को हम लोगों को डिफरेंटली ही चार्ट से जज करना चाहिए।
जी, तो मेरा सबसे पहले आपका आपसे क्वेश्चन है कि आप D24 की इम्पोर्टेंस, महत्व के बारे में कुछ हमें बताइए।
D24 देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में मोस्टली पेरेंट्स आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं ये जानने के लिए कि उनका मतलब जो बच्चे हैं किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए अच्छी रहेगी ताकि उनका कैरियर आगे प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चले। तो मोस्टली हर पेरेंट्स को ही ये जानने के इच्छुक होते हैं आज की डेट में। बट और एक D24 ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वर्क चार्ट है जिसके थ्रू हम लोग इसको बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं और रिजल्ट भी बहुत एक्यूरेट मिलते हैं D24 चार्ट के थ्रू। फिर एक चीज और है इसमें, अगर आप देखें कि मोस्टली जितनी पॉपुलेशन है, जितने लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट में हुआ या जितने मैंने मतलब बाकी लोगों से बातचीत हुई, तो देखा जाता है कि जो लोग जिस फील्ड में एजुकेशन करते हैं प्रोफेशनली डिफरेंट फील्ड में कर रहे होते हैं, मतलब कैरियर किसी और फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो, या मतलब जिसमें अगर एजुकेशन भी उसमें ली होती है बट प्रोफेशनली उसमें काम कर भी रहे होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं।
जी,
धीरे धीरे वो कहते हैं अब तो 5-8 साल लगा दिए हमने सीखी पढ़ाई कर ली, बट इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो क्या क्या बेसिकली वही एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग D24 से उस कर सकते हैं कि उस नेटिव के लिए कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी फील्ड बेटर है जिसमें उसको जाना चाहिए, जिसमें उसको पैशन की तरफ उसको काम करे, सेल्फ इंटरेस्ट लेकर उसको काम करे।
जी जी, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई हैं, अब मेरे क्वेश्चन इसी के बेस पर होने वाले हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी में हम किसी भी कंक्लूजन के लिए भाव, राशि और प्लैनेट का कॉम्बिनेशन देखते हैं और एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो एजुकेशन में आपको क्या लगता है कि इन तीनों बातों का कॉम्बिनेशन कैसे हमें बताएगा कि अगर पंचम भाव में ये राशि है, ये प्लैनेट है, ये मींस उसका कनेक्शन किसी प्लैनेट या राशि से है, तो उसका रुझान या बुद्धि किस और जा सकती है? ये बहुत बड़ा आंसर होने वाला है और मैंने एक लाइन में क्वेश्चन खत्म किया है, तो आप प्लीज हमें बारे में।
प्लैनेट्स में हमें पता है गुरु जो कि बुद्धि का कारक होता है, उसके बाद आपका वो ये मरकरी, वीनस और मून, तीन शब्द, ये चार प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे इंटेलिजेंस लेवल को शो करते हैं चार्ट के अंदर, ठीक है ना। अगर जुपिटर की वही बात है, जुपिटर नॉर्मली ज्ञान देने में ज्यादा विश्वास करता है लेने के बजाय, उसको लगता है कि मैं सामने वालों को पढ़ाऊं, सामने वालों को सिखाऊं, मतलब उसका टेंडेंसी वही रहती है सामने वाले की। जबकि मरकरी का उल्टा हो जाता है, वो बोलता है यार मैं तो ले लेता हूँ, जितना चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले लो, सब गेन कर लो, हर चीज की एक क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्यूरियस बहुत होता है, हर चीज जानने की इच्छा होती है। वीनस प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। प्लैनेट्स तो बेसिकली हम लोग जो आज से आपने बुलाया लग्नेश, पंचमेश, मतलब अगर इन प्लैनेट्स के हाउस लॉर्ड्स बनते हैं या ये प्लैनेट्स इन घरों में बैठे होते हैं, तो डेफिनेटली उसका रुझान इनके तेज के प्रति बढ़ जाता है, ठीक है ना। ऐसे अगर हम लोग इनकी राशि की बात करें, तो जैसे हमने बात करी गुरुओं की राशि, तो जैसे ये आपकी ये सैजिटेरियस और पाइसेस दो राशि होती है, तो उसमें भी सैजिटेरियस को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ह्यूमन राशि है, तो थोड़ा बेटर एजुकेशन में ज्यादा बेटर होती है आउट ऑफ द टू अगर हम गुरु की बात करें। तो ऐसे ही अगर हम लोग बुध की बात करें, तो बुध की दोनों राशियां वर्गो और जेमिनी, वर्गो डेफिनेटली ज्यादा फिरोज होती है, हर चीज आने जाने की ज्यादा इच्छा होती है, ज्यादा बेटर मानी जाती है एज कम्पेयर टू जेमिनी, क्योंकि जेमिनी थोड़ा सा वो हो जाते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात हो जाती है, सीखना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती उनके अंदर, बोलते हैं यार बस हाँ अपना काम कर लो, तो इस टाइप से वो चलता रहता है
जी।
तो वो तो हम लोगों को कॉम्बिनेशन करके ही चार्ट में देखना पड़ता है, डिफरेंट प्लैनेट्स की, इन राशियों की, पंचम में कौन सी राशि आ रही है, इनका कनेक्शन लगन लगने से साथ कैसा हो रहा है, कहाँ पे प्लेस्ड है, एस्पेक्ट है कि नहीं है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग एक जजमेंट के ऊपर पहुंचते हैं कि इनको किस फील्ड में जाना चाहिए।
बहुत बढ़िया, आपने जुपिटर और मरकरी की राशियों के बारे में बताया, आप वीनस की राशियों में भी क्या डिफरेंस है बता सकते हैं?
जी जी, वीनस में जैसे टॉरस और लिब्रा आती हैं, तो लिब्रा राशि को अच्छा माना जाता है गेनिंग नॉलेज के लिए, और टॉरस वाली को ऐसा माना जाता है कि टॉरस वाली खाली अपने काम की मतलब की इंफॉर्मेशन लेने के इच्छुक होते हैं लोग, ज्यादा लगता है कि अपने काम का समझ में आ जाए बाकी कोई बात नहीं, तो थोड़ा ये दोनों में फर्क आ जाता है, लिब्रा बेटर ज्यादा मानी जाती है।
हाँ जी, क्योंकि लिब्रा एक ह्यूमन साइन भी है और वायु तत्व राशि है, जैसे सर ने बताया था कि 3, 7, 11 वायु तत्व राशियां वो हमारी बौद्धिक क्षमता को दिखाती है, ह्यूमन साइन और वायु तत्व अच्छी इंटेलिजेंस है। तो मैं इस नोट पे ये क्वेश्चन एंड कर रही हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि D24 एज ए चार्ट आपने कैसे देखना सीखा इस कोर्स के थ्रू, नितिन सर ने आपको क्या बताया इसके बारे में?
हम लोग को D1 की इंपॉर्टेंस देखनी है, भाव, भावेश और कारक, तीन चीजें हम लोग हर अक्सर बातें करते हैं। तो D1 में आपका फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, लगन और कारक जो कि इसमें जुपिटर बनता है, तो D24 में वो किस पोजीशन पे गया, कहाँ पे गया और क्या कनेक्शन है और इन प्लैनेट्स और राशियों के साथ क्या कनेक्शन बने, तो ये सब एनालिसिस करके नॉर्मली हम लोग इनका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है नेटिव का और किस फील्ड की तरफ उसका रुझान बढ़ रहा है।
जी, तो आप बोलना चाहते हैं कि D1 का लग्नेश और पंचमेश आप D24 में देखते हैं, और D24 के लग्नेश और पंचमेश भी इम्पोर्टेंट होते हैं?
वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको भी हमें D24 में चेक करना चाहिए कि उनका भी कुछ कनेक्शन इन राशियों से, इन प्लैनेट के साथ, और हाउसेस भी होते हैं, इन हाउसेस से आ रहा है तो डेफिनेटली वो एक गुड IQ लेवल को इंडिकेट करते हैं।
ठीक है, तो आपने हमें बताया कि D1 का लगन पंचम जुपिटर को D24 में देखिए और D24 को एज ए चार्ट एज ए होल भी देखा जाता है।
बिल्कुल
ठीक, बहुत बढ़िया। आगे है हम कुंडली देख के किस तरह से बता सकते हैं कि नेटिव किस फील्ड में एजुकेशन ले सकता है जो उसके करियर में भी हेल्प करे?
सपोज करें फिफ्थ हाउस में आपकी मरकरी की राशि पड़ी
जी,
ठीक है ना, मरकरी कुंडली में कहीं बैठा हो सकता है, लगन लगने से संबंध भी बना रहा हो। फिर हमने देखा D24 में भी मरकरी आपके फिफ्थ हाउस में आके बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि मतलब मरकरी का रोल उस नेटिव के इंपैक्ट के ऊपर D1 में भी आ रहा है, D24 में भी आ रहा है, उस राशि से भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर हमें मतलब मरकरी के ट्रेड को लेके हम लोग ये देख सकते हैं उसको उस फील्ड में जाना चाहिए। जैसे मरकरी आपको अकाउंटेंसी को बताता है, मरकरी आपको मतलब सीए की फील्ड में जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जिस प्लैनेट्स को हम लोग कंबाइन करके लगन लग्नेश पंचमेश किस ट्रैंगुलर ट्रेड्स आ रहे हैं, फिर 10th हाउस और 11th हाउस के साथ जिसका कोई कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि कैरियर में अल्टीमेटली 10th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए तभी उसको कैरियर बना पाएगा, नहीं तो एजुकेशन करके भी वो नहीं कर पाएगा
जी।
और फिर उनके मनी के जो दोनों के हमारे धन भाव हैं, सेकेंड हाउस और 11th हाउस से कनेक्शन आना चाहिए, इनकम तो उसी से होगी, इनकम का हमें उसी से पता लगेगा। तो ये सब कंबाइन करके कहीं ना कहीं हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि उसको किस फील्ड में नॉर्मली जाना चाहिए जो उसके कैरियर में भी हेल्प करे।
आपने प्लैनेट की बात की मरकरी, इसमें मुझे लगता है साइन की भी इक्वल इम्पोर्टेंस है कि मरकरी एक बिजनेस प्लैनेट है, अगर वो तुला में है तो वो भी एक वैश्य राशि है, तो उसका रुझान मीन्स अगर वो लगन लगने से भी संबंध बना रहा है और जैसे आपने बताया 10th या 11th से भी कनेक्शन है तो वो बिजनेस में जा सकता है, ऐसी वर्गो एक सर्विस साइन है, तो आप इस पे थोड़ा बता सकते हैं कि साइन या हाउस उसे कैसे डिफरेंट कर देता है?
बिल्कुल सही बताया ज्योति जी कि साइन आपको इंडिकेट करेगा कि मतलब आपको कैसे उसमें आगे बढ़ना है उसमें, जैसे वर्गो का और आपने जेमिनी का भी आपने एग्जांपल बताया है उसमें। अगर हाउसेस की बात करें तो हाउसेस को उसमें मतलब डिफरेंट हाउसेस भी हम लोग देखते हैं आपका, जैसे नॉर्मली हम लोग हाउसेस के लिए पढ़ते हैं कि सेकंड हाउस फिफ्थ हाउस 9th हाउस, इस पढ़ाई के लिए मतलब यही शुरू से हमने पढ़ते आए हैं कि यही हाउसेस इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई के लिए। बट जब हमने नितिन सर से पढ़ा तो उन्होंने हमें थोड़ा सा और इसको ब्रॉडर करके डिफरेंट उसमें बताया कि कुछ और भी हाउसेज होते हैं, कुछ और भी राशिज होती हैं, जिसके कारण मतलब हम लोगों को पता लगता है कि ये भी पढ़ाई से रिलेटेड है, एजुकेशन से IQ लेवल से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें फिफ्थ हाउस का तो सबको पता है, फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं, फिफ्थ हाउस एक आपका बेसिकली मंथना का घर है, आपकी प्लानिंग का है, आपकी इंटेलिजेंस लेवल को इंडिकेट करता है
जी,
बेसिक एजुकेशन वही है। सेकेंड हाउस को हम लोग लेते हैं, सेकेंड हाउस को एक्चुअली सेकेंड हाउस हमारा फैमिली एटिकेट को बताता है, वो हमारी बेसिक एजुकेशन बताता है, जो बच्चा पैदा होने के बाद जो उसको घर से मिलती है, जो फादर मदर से मिलती है, मदर कहती है भाई रात को ब्रश करके सोना है, ऐसे नहीं खाना है, ठीक से बैठना है, तो वो तो बेसिक एजुकेशन है जो चलो सबसे पहले उसको पेरेंट्स से ही जो एजुकेशन मिलती है, दैट इज सेकंड हाउस, दैट इज सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस को हम लोग ऐसे देखते हैं, उसके रिसोर्सेज बेसिकली रिसोर्सेज क्या है, फैमिली से क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं। फिर 9th हाउस का इंपॉर्टेंस रोल आ जाता है, इट इज फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ, हमें पता है फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ है तो डेफिनेटली इसका रोल आना ही चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए भी हम लोग कंसिडर करते हैं फिफ्थ हाउस को, 9th हाउस को सॉरी। फिर 8th हाउस का भी रोल है कहीं ना कहीं, नितिन सर ने हमें बताया कि 8th हाउस का रोल होने से आप एक मतलब सरफेस पे नहीं पड़ेंगे, आप डीपर नॉलेज के लिए जा सकते हैं, ऑकल्ट में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ठीक है ये सब तो कर लिया, इंटेलिजेंस लेवल आपकी रिसर्च सब बताता है, बट उनका कहना है कि आपको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 4th हाउस से देखिए।
बहुत बढ़िया,
4th हाउस आपको बताता है कि आपको डिग्री या टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा।
क्योंकि मुझे मालूम है ये कंफ्यूजन रहता है कि 2, 4, 5, 9 में किसको इम्पोर्टेंस दी जाए और क्या कौन सा हाउस किस बात को दिखाता है, तो आपने बहुत अच्छे से कवर किया और ये मेरा एक क्वेश्चन भी था जो आपने इसी में ले लिया, बहुत बढ़िया किया आपने। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं प्रॉमिस ऑफ द चार्ट की, तो मैं डायनेमिक प्रॉमिस पे भी आना चाहूंगी कि दशा किस तरह से हमारी बुद्धि चेंज होगी या हमारी इंक्लिनेशन चेंज होगी या हमारी शिक्षा चेंज हो जाएगी अगर हम मान लीजिए साइंस फील्ड में कर रहे हैं और दशा चेंज होगी अब हम कॉमर्स में आ गए हैं, ये जानने में एस्ट्रोलॉजी हमारी कैसे हेल्प कर सकती है?
दशा तो एक ऐसा है कि दशा तो हर चीज को घुमा देती है, कहते हैं दशा ही दिशा दिखाती है, नॉर्मली ये कहा जाता है। तो दशा एट द टाइम ऑफ एजुकेशन क्या दशा चल रही है नेटिव की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब उस अगर किसी प्लैनेट की दशा है तो उसके जो ट्रेड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उसके जिस हाउसेस के लॉर्ड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दशा, क्योंकि दशा ही सपोज राहु की दशा चल रही है और राहु का कनेक्शन कहीं ना कहीं पंचम से आ रहा है या पंचम को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमें कहना पड़ेगा या हमें समझ बताना पड़ेगा कि राहु के ट्रेड उस पेशन मतलब नेटिव के अंदर आएंगे, वो कंप्यूटर लाइन में, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, मतलब जो जो राहु के ट्रेड्स हैं, आप उस चीज में उसको हम बोलेंगे कि एजुकेशन करनी चाहिए, तो उसके लिए बेटर रहेगा वो।
जी जी। दशा का कनेक्शन अगर पंचम भाव पंचमी से हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसका इंक्लिनेशन उस तरफ हो जाएगा, लेकिन अगर दशानाथ का कनेक्शन पंचम पंचमी से नहीं है या फोर्थ से भी नहीं है, जो हमें टाइटल या डिग्री दिखाता है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये दशा हमारी स्टडीज के लिए या डिग्री होल्डिंग के लिए कैसी जाएगी?
दशा अगर उससे कनेक्टेड नहीं है तब भी उसके जो ट्रेड्स हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, एक्टिव तो होंगे ही होंगे, उस तरफ नहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। हाँ, जैसे अगर हम वीनस की बात करें, वीनस अगर आपकी मतलब यंगर एज में आ जाती है, बिटवीन 13-17 ईयर जैसे हम अंतर बताते हैं, तो उस टाइम डेफिनेटली सीधी सी बात है कि वीनस के ट्रेड्स एक्टिव हो जाएंगे, नेटिव अपोजिट जेंडर की तरफ थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, टीनेज होती है वैसे भी, एज भी वैसे ही होती है, तो यही उस टाइम उसको सलाह देनी चाहिए, बताना चाहिए कि उसको वीनस के ट्रेड की तरफ डाइवर्ट कर दे, मतलब जैसे उसको फाइन आर्ट्स में चले जाए, म्यूजिक में उसको थोड़ी बोले कि म्यूजिक में पार्टिसिपेट करे और डांसिंग में करे, तो इस टाइप के ट्रेड्स करेंगे तो डेफिनेटली उसका वो जो दशा का इम्पैक्ट है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा और उसको हेल्प भी करेगा।
आप बोल रहे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जैसे मुझे याद है आपने बात बोला कि जब अगर जुपिटर की दशा है तो आप टीनेजर को बोलिए कि आप पढ़ाइए, पढ़ा के आप सीखेंगे ज्यादा। मरकरी है तो ऑब्वियसली वो क्यूरियस होगा जानने में, पर उसकी क्यूरियोसिटी किसी तरफ भी जा सकती है, तो उस टाइम पे बच्चे पे ध्यान दीजिए। मैं दशा के पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी कि मान लीजिए कि अगर दशानाथ का फोर्थ या फिफ्थ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन या अगर वो वहां से सपोर्टिवली बैठा है, बेनिफिक प्लैनेट होके मान लीजिए केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो मुझे लगता है वो उन घरों को सपोर्ट करेगा। याद होगा तरुण जी, हमने ये सीखा था साथ।
नहीं, बिल्कुल 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 कराया था सर
जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो सकता है कि कोई इंसान कम पढ़ा लिखा हो लेकिन वो करियर में बहुत अच्छा कर रहा हो या वाइस वर्सा, इसे जानने के लिए कुंडली का प्रॉमिस इम्पोर्टेंट होता है या दशा ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, सिंस हम दशा की बात कर रहे हैं?
क्योंकि प्रॉमिस तो इम्पोर्टेंट है ही, सबसे पहले तो कुंडली का प्रॉमिस ही देखा जाता है, हम लोग प्रॉमिस देखते हैं कि प्रॉमिस होना चाहिए तभी वो कहीं ना कहीं हमें फ्रक्टिफाई करेगा। अब कब करेगा वो दशा ही इंडिकेट करेगी कि कौन सी दशा चल रही है, किस दशा में उसका रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। तो डेफिनेटली दशा का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बशर्ते प्रॉमिस होना चाहिए चार्ट कहता है।
इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको याद होगा कि सर ने हमें D24 में डिटीज करवाए थे, जैसे कि अनल, मित्र, माया, इन सब का रोल D24 में को समझने में क्या है?
हाँ, देखिए सर ने हमें जो कराया था उसमें उन्होंने मतलब 12 डेटीज की, D24 के 12 डेटीज होते हैं और हर डेटीज का उन्होंने मतलब बताया था कि हर डेटीज के एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि मतलब वो कैसे एक्ट करता है। जैसे अगर अनल की बात करें तो जैसे बताया कि अनल एक अग्नि तत्व है, मतलब अग्नि है, एनर्जी का फॉर्म है, तो कोई भी चीजें हैं अग्नि से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड वो करनी चाहिए। जैसे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, डिफेंस हो गई, या कोई एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, तो जैसे कोई भी अगर हमारा प्लैनेट अगर अनल में बैठा है तो अकॉर्डिंगली हम उसको मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि इस फील्ड में उसको जाना चाहिए। तो ऐसे ही हर डीपीज के अलग अलग होते हैं। जैसे गोविंद की बात करें, गोविंद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मतलब इंडिकेट करता है, तो अगर कोई प्लैनेट आपका उसके अंदर है तो मतलब ऐसे हर डीपीज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अकॉर्डिंगली हमारा फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट है सबसे पहले हम उसको देखते हैं, या फिर उसकी डिग्रीज देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन से डीपी के अंदर फॉल करता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि इसको इस फील्ड इसके लिए बेटर रहनी चाहिए।
बहुत बढ़िया। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगी, मेरे पंचम भाव पर मरकरी का इम्पैक्ट है, तो मरकरी जैसे कि फाइनेंस को दिखाते हैं और मेरे जो हम वाइटल प्लैनेट्स देखते हैं या डिग्रीज देखते हैं कौन कहाँ पर गया, पंचम भाव में कौन सी डिग्री है, वो कौन सी डिटी दिखा रहा है, पंचम भाव में बैठा प्लैनेट कौन सा दिखा रहा है, तो वो ज्यादातर गोविंद में जाते हैं। अब गोविंद भी फाइनेंस को दिखाते हैं और मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आपका प्रॉमिस ऑफ द चार्ट कुछ दिखा रहा है और आपका डिटी भी वही दिखा रहा है, तो आप श्योरिटी के साथ एक बात बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट रीकन्फर्मेशन कि अगर डी वन ये बोल रहा है तो डी नाइन ने भी यही बोला, मेरे डिटी ने भी ऐसा ही बोला, तो हम और श्योर हो जाते हैं अपनी बात रखने में।
बिल्कुल, वो तो हम वर्गा चार्ट देखते ही इसके लिए ज्योति जी की उसका कन्फर्मेशन करने के लिए, अगर जीवन हमें शो कर रहा है वही चीजें और अगर हमारा वर्गा चार्ट वो शो करता है तो हम एक श्योर हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ डेफिनेटली ये चीजें इसके ऊपर नेगेटिव के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेंगे।
राइट,
ये ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे।
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू तरुण जी, आपके साथ एस्ट्रो डिस्कशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे हमारी बहुत अच्छी रिविजन हो रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू।
उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। अगर आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप इस ऑडियो शो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।